पिछली बीच में अभी हाल के ये सब है। इनका आदि को कोई विचार ही नहीं है, अनादि ये सब नहीं है। जितने भी सब देखे ये हमारे मक्का मदीना से चला हुआ था केवल 1100 वर्ष। इससे पहले ये धर्म की कोई भू तक गंध तक नहीं है। बौद्ध धर्म में नहीं, बुद्ध देव के पहले, जैन धर्म जैन के पहले, महावीर के पहले, ये सब कुछ था ही नहीं। कुछ लोग ऐसा आजकल करने जा रहे हैं कि हमारा धर्म भी महाप्रभु जी से हुआ कि 1500 वर्ष का। इन दुर्बुद्धियों को मालूम नहीं ये हमारा धर्म कहाँ एकदम अनादि काल से सनातन काल से ही आ रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले आदि वो आदि और उनके गुरु भी नारायण अथवा कृष्ण है और आज तक वो चलती आ रही है। इसलिए यदि मंत्र लेना है, यदि सार्थक रूप में भजन करना है तो इस परंपरा में धारा में आकर के चलना है। इसलिए भजन की मेरुदंड को बताया गया है गुरु भक्ति बिना गुरु। इसलिए हमारे 64 प्रकार की भक्तियों में पहले ही बतलाया गया गुरु पदार्थ और इसके बाद में गुरु। सबसे पहले गुरु का पदार्थ करना, पदार्थ नंदन करना क्या मुखात्र क्यों नहीं कहा गया, पदार्थ क्यों नहीं कहा, क्यों कहा गया? गुरु जी जिस पथ से चल रहे हैं हम उस पथ का अनुसरण करते हुए साथ साथ में चलेंगे, इसलिए पदार्थ कहा। ऐसा नहीं मुख से गुरु जी ने जो कहा सुन लिया काम से, किंतु चलते हैं अपने तरफ से, अपने विचार से, मनमाने विचार से चलते हैं। तो ये गुरु पदाश्रय नहीं हुआ। पद का आश्रय करके जैसे गुरु चल रहा है ना, उसके विचार जैसे हैं, उनके आचार जैसे हैं, सब चीज को लेकर के हमको चल सकते हैं। तो ये गुरु यदि गुरु बेईमान है और तत्वज्ञ है, यदि उसको सिद्धांत ज्ञान नहीं है तो हमको भी वैसा ही होना चाहिए ना? नहीं, वो गुरु ही नहीं है। जिसको ज्ञान ही नहीं है, असत पथ पर चल रहा है, जिसको विवेक नहीं है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं, जिसको सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत तत्व तो क्या ज्ञान है, गीता भागवत इत्यादि को जानता ही नहीं, तो वो गुरु शब्द वाक्य ही नहीं है। आजकल के अधिकांश जितने भी दिल्ली में भोजफोड़ गुरु हुए हैं, भोजफोड़ माने क्या
मिट्टी से
भूमि का है, भूमि को फाड़ करके निकले हैं,
जितने अपने जमीन।
अभी कलकत्ता में एक भोजफोड़ गुरु थे, उनका उनकी मृत्यु हो गई, बालक ब्रह्मचार्य, वो फोन के साथ फोन से देता था, वो लाउड स्पीकर से दीक्षा 1,00,000 आ गए, कहे सब लोग तुम लोग से चाहे तुम हमारा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में तुम लोग भी पढ़ो। तो एक एक दो दो लाख आदमियों को वो एक साथ में दीक्षा, गुरु से कोई संबंध नहीं, बस वो माइक से कह दिया और कोई पालन नहीं करता था, सब कहे जो जो सुन लिया वो मेरा शिष्य हो गया।
और एजेंट से
अच्छा जब मर गया तो 10 दिन हो गए मरे, किसी ने बतलाया नहीं, तो फिर किसी प्रकार से पुलिस को पता लगा जो वो तो मर गए हैं, तो कहीं नहीं मरे नहीं है समाधि में, डॉक्टर लोग सब आए चेक किया, 10-15 मेडिकल कॉलेज कलकत्ते से ज्योतिष बाबू ने भेज दिया, तो वो जाकर के देखा तो वो मरे हुए 15-20 दिन हो गया। कहा जा अब जल्दी से 1,00,000 को निकाल करके उसको दफन करा दो, और वहां पर लड़ाई झगड़ा गोला बारूद चला, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मार करके उनके हजारों आदमियों को जेल में दे करके किसी प्रकार से उनको ले करके तब
56 दिन के बाद
56 दिन के बाद अभी 2 दिन पहले रजनीश नाम के गुरु हो गए, कुछ दिन पहले अभी बिहार में कौन था
अनुकूल
नहीं अभी भी केस लाल
बांध
साई, तो दक्षिण अभी बिहार का भी हुआ था, जिसका यहाँ भगवान को भी वो आदमी मिला था, लड़ाई झगड़ा करने वाले सब
आनंद मार्गी तो फिर कंकाल काट
वो काट करके लोगों को दफना दिया कितना। और हजारों रजनी क्यों उनके पीछे पीछे चलते हैं जानते ही नहीं, रजनीश के भी लाखों शिष्य बन गए। इसी तरह से संसार में ये सब चाहे जिन वही परंपरा धारा को लेकर के नहीं, अधिकांश सब ऐसे और लोग ऐसे भेड़ जैसे एक भेड़ चली और सब भेड़
स्वामी।
इस तरह से व्यास जी को जो नहीं मानेगा, ये लोग व्यास जी को नहीं मानते, इनके विचार को नहीं मानते हैं, इस व्यास के विचारों को मान करके जो सब हैं, विशेष करके ये भी अद्वैतवादी उनको पूजा तो कर लेते हैं तो उनके कुछ विचारों को मानते हैं, कुछ विचार को मानते हैं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, इस चीज को वो नहीं लेते। नारायण भगवान है, इस चीज को वो नहीं लेते। उनका रूप नहीं हो सकता है, जगत ये मिथ्या है, ये सब बतलाते हैं। इसलिए इन विचारों का व्यास ने सर्वत्र ही खंडन किया। इसे गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होना चाहिए, उल्टा पदार्थ होना चाहिए। गुरु जिस पथ से चलता है हम चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा। हमारे गुरु जी ने हमको जो शिक्षाएं दी बस अपने तक सीमित रख करके खत्म कर दिया था, उन शिक्षाओं का दूसरों पर उन लोगों को भी शिक्षा देकर के सबको भगवान के भजन की तरफ में ले चले, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा। इसीलिए प्रचार भी है और आचरण की भी भाव। महाप्रभु जी के इच्छा से शिवास पंडित ने कहा हमारे घर में ही, गरीब ब्राह्मण के ही घर में दूसरे दिन सभी लोग भक्त लोग वहां पर आए। उन्होंने सामान जो एकत्रित किया था वहां पर रखा, सब भक्त लोग आए, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य गदाधर पंडित और सब जितने महाप्रभु के संन्यास लेने से पहले की बात वहां पर एकत्रित। सब लोगों ने देखा कि नित्यानंद प्रभु सबसे सीनियर वैष्णव है, सबसे सीनियर
और सन्यासी भी
है, उम्र से नहीं,
गुरु परंपरा
से हम चल रहे हैं। उनसे बहुत बड़े डबल उम्र के हैं अद्वैताचार्य, केस भी उस समय पक चुका है, उसमें उनकी आयु भी 70-75 की है। नित्यानंद प्रभु की मुश्किल से होगी 50 के या
25-30
हो। किंतु नित्यानंद की पूजा क्यों हो, क्योंकि मध्वाचार्य के शिष्य अद्वैत ये है, लक्ष्मीपति जी के शिष्य हैं माधवेंद्र, और लक्ष्मी जी के ही शिष्य हैं ये। किंतु नित्यानंद प्रभु जी थोड़ा सा कम उम्र में थे, उस समय बच्चे थे 10-12 वर्ष के, उस समय उनकी दीक्षा। और ये माधवेंद्र पुरीपाद जी उसमें प्रौढ़ थे, बड़े विद्वान रसिक सब प्रकार से थे, इसलिए उनको ही इन्होंने भी अपना शिक्षा गुरु या गुरु मान लिया।
वैसे गुरु भाई हैं
किंतु क्योंकि उम्र में भी छोटे हैं और वो प्रौढ़ हैं, विद्वान भी हैं, रसिक भी हैं, साधक भी हैं, इसलिए उन्होंने उनको ही अपना गुरु के रूप में मान लिया, अतः शिक्षा गुरु के रूप में। ये नहीं कहा कि मेरे शिक्षा गुरु हैं, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, गुरु है तो गुरु है। ऐसे जैसे श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य
गोपाल भट्ट
श्रीनिवास
रामचंद्र
उन्होंने मांग लिया उनसे, नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास जी से मांग करके अपने साथ में रखते थे। और श्रीनिवास वो रामचंद्र जी अपने जैसे वो गुरु हैं ना, नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास ऐसे थे कि इनको गुरु के रूप में थे,
नरोत्तम
और इन्हीं के साथ, उनके साथ में गुरु जी के साथ में कम रहते थे, किंतु उनके प्यारे शिष्य किनके श्रीनिवास जी किंतु रहते हैं इनकी सेवा। किंतु श्रीनिवास जी समझते हैं कि ये मेरी सेवा ही करता है।
रामचंद्र संगम आई नरोत्तम सबकी नरोत्तम है, उल्टा
आज जैसी हो गया, मैंने आज जैसी जो संकीर्णता है पहले ये सब संकीर्णता है, वैष्णव मात्र को ही सभी लोग गुरु मानते थे और सब गुरु लोग इसी से ही वैष्णव के बातें सफल नहीं तो अपने से तो कह देते थे जाओ वहां पर उनके पास में सीख।
जो जो गुरु है वो राम कह रहे हैं संग मांग रहे हैं, वो अपने शिष्य का संग मांग रहे हैं,
ऐसा ही होता गुरुओं का आदर होता। तो वो दिन सभी लोग एकत्रित होकर ब्याज पूजा के लिए चलते हैं। ये ब्याज पूजा किस रीति से चल रही है? उन्होंने कहा कि पोथी भी हमारे पास में एक है और पुथी है। पुथी कौन सी? भक्ति गुरुनाथ ठाकुर ने इस सारी सत्य करके वो गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी, शंकराचार्य जी का एक गढ़ है, शंकराचार्य वहां पर भी रहे थे गोवर्धन मठ में पुरी में, वो जो मिट्टी के अंदर में है। तो वहां से भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पोथी प्राचीन आविष्कार किया वहां की लाइब्रेरी से छोटी सी, वो प्राचीन काल से चल रही है। उसके लेखक जो है अद्वैतवादी है, किंतु कैसे इसकी पूजा होती है परंपरा की, उसमें उसका उल्लेख उन्होंने किया। और जब वो उल्लेख श्रीवास पंडित ने कहीं से मांग करके और उसको भी उपस्थित की, उसी के अनुसार में प्यार पूजा होगी। नित्यानंद प्रभु जी के लिए हुआ, जैसे यही सबसे सीनियर हैं, सबके गुरु हैं, और अद्वैताचार्य के भी और जितने उपस्थित हैं, इसलिए यही आरंभ करे थे।
इस पद्धति के तो रावण संप्रदाय की पद्धति मानी जाती है ना?
नहीं,
वैष्णव पद्धति
गुरु महाराज ने इसको छपवाया है गौड़ी हमारे पत्रिका में,
गौड़ी
और उन्होंने इसमें उल्लेख किया। प्रभुपाद जी ने भी इसको छपवाया था पत्रिका में, संस्कार करते थे तो उन्होंने, तो वो पूजा आरंभ हुई, सब कुछ रख दिया गया। हुआ जैसे नित्यानंद प्रभु सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए यही पूजा करें। सब लोग उनको कह रहे हैं सुभाष पंडित जी जल्दी से कीजिए पूजा आरंभ कीजिए, किंतु वो पूजा कर नहीं गए, वो चुपचाप हूं हूं कर रहे हैं, हूं थर हूं मने थर, जो कुछ करते बस हूं हूं करते रहे। इसे में चैतन्य महाप्रभु आगे, जब वो आ गए उस समय निमाई पंडित हैं, निमाई पंडित जी आ गए तो सब लोग कहे जे नित्यानंद प्रभु जी पूजा ही आरंभ नहीं कर रहे हैं, देखिए तो बड़े हस्ती के हैं सुनते नहीं, सुने श्री बात आप पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हूं उनसे भी कर रहे हैं। जब आ गए निकट में एकदम तो पूजा का जो चंदन था चंदन लेकर के माला में लगा लिया और लगा करके
माला
करके और महाप्रभु जी के यह है व्यास पूजा। यहाँ पर व्यास जी हैं, उनके अंश अंश और कला हैं, सत्यावेश हैं महाप्रभु जी के। महाप्रभु जी हैं कृष्ण, कृष्ण के अंश अवतार या सत्यावेश अवतार हैं व्यास जी। तो जहाँ पर भी स्वयं वो प्रभु कृष्ण ही महाप्रभु जी हैं, वहां पर पहले व्यास की पूजा माने इसे उनकी पूजा उन्होंने की। कोई नहीं समझ सके किंतु महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हैं। यही व्यास जी की पूजा। उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहा है, मैं साधारण मनुष्य हमको क्यों पूजा कर रहा है? बहुत भगे किंतु और लोग भी स्वरूप दामोदर भी उस समय थे, गदाधर पंडित जी थे, श्रीवास पंडित जी थे और बड़े स्वरूप दामोदर, उनके बाल में सहपाठी हैं पुरुषोत्तम आचार्य, ये सब जगदानंद है, ये सब लोग उस समय
पंडित,
ये सब लोग
हैं।
इस समय इसके बाद में गुरु परंपरा की पूजा। इसका ये तात्पर्य है कि जो गुरु हैं, गुरु पूजा है, गुरु अपने गुरु और गुरु वर्गों की परंपरा की पूजा करता है। व्यासता व्यास को आदि मान लिया जाए या कृष्ण को भी ले लिया जाए तो कृष्ण के भी रहेंगे, कृष्ण के लिए एक कला। हमारे गुरु जी ने कुछ विशेष इसमें और बना दिया, कृष्ण के साथ में श्रीमती राधिका जी को रखा, राधा कृष्ण पेयर एक, और उसके साथ में गौर गदाधर का एक पेयर, उन दोनों को रख दिया। रख करके उसकी पूजा बीच में, कृष्ण को भी बीच में रखा, और उसके बाद में उसके चारों तरफ में या सात तरफ में सात पंचकों की पूजा की। कृष्ण पंचक, व्यास पंचक, व्यास पंचक,
चतुष्कम पंचक,
चतुष्कम
सप्तपंचक,
सप्तपंचक माने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि। कृष्ण पंचक में कृष्ण संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इनका भी, और उधर में पंच तत्व के रूप में गदाधर कृष्ण राधिका गदाधर गौर और किसका है नित्यानंद नित्यानंद, ये पांच तत्वों का उन्होंने पूजा। आचार्य पंचक में लिया हमारे चार आचार्यों को, ब्रह्म रुद्र सन ये चार, और उनके कलयुग वाले चार रामानुज मध्व विष्णु स्वामी इन चारों को लिया, चार और एक पांच, और हमारे पांच आचार्य इधर अपनी परंपरा से गुरु जी पूजा करते थे प्रभुपाद, गौ किशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, पांच आदमी प्रभुपाद, गौ किशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, सर बलदेव इत्यादि, ये पांच तो अपनी परंपरा है। अब हम लोग गुरु जी से नहीं, गुरु जी से पांच परंपरा, इस तरह से सबकी पूजा होनी चाहिए। एक कलश रख करके उसमें सबकी पूजा रख करके गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करेंगे, यही व्यास पूजा है। वो लोग हम सब पर विशेष रूप में, यदि माला की एक कड़ी एक फूल निकल जाए ना तो क्या होगा, सब वो अलग अलग छिटक जाएंगे, इसलिए एक कड़ी भी इसमें से नहीं निकलनी है, नहीं तो लिंग खत्म हो जाएगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए समस्त परंपरा के वैष्णवों की पूजा करने की, इसको कहते हैं। अब चले हम, कल हम लोग संक्षेप में व्यास पूजा करेंगे। बंगाल में तो ऐसा नियम है, विशेष करके हम लोगों के संप्रदाय में, जो अपने जन्म के दिन में गुरु अपने गुरु वर्गों की पूजा करता है और उनके शिष्य लोग उनकी पूजा करते हैं, आजकल इस रूप में ये परिचय, प्रभुपाद के समय में भी ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु वर्गों का पूजन किया, हमारे गुरु जी ने अपने गुरु वर्गों का पूजन किया और उनके शिष्यों ने उनकी, इस प्रकार से। किंतु साधारण रूप में इसकी मान्यता सभी लोग देते हैं, विशेष करके उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में ये मानता, ये आषाढ़ पूर्णिमा वाली ये सब, विशेष करके सनातन गोस्वामी जी का मुड़िया पूर्णो के दिन में वो अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ गया, इसलिए वहां पर विशाल रूप में आज से मैंने एकादशी के दिन से ही परिक्रमा चल रही है और वो शायद पूर्णिमा तक भी वो चलती रहेगी। गुरु का कृति विधान करना, ये भजन का अर्थ है। गुरु कौन है, भागवत का रसिक होना चाहिए, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि सभी लोगों ने ही, हमारे नरोत्तम ठाकुर जी गुरु के संबंध में अधिक महिमा का हम लोग भजन रखते थे। हे देव हे दई हे भुवनई कबंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणई कर, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिरा, हा हा कदा भवता सुपद, मैं एक चीज को बोलना चाहता तो मैं भूल जाता हूँ, इसलिए नहीं बोलता। गुरु एक अखंड तत्व है ना, गुरु अखंड तत्व। बलदेव प्रभु ही या नित्यानंद प्रभु जी हैं मूल गुरु, किंतु गौड़ीय वैष्णव में कुछ और भी है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी ने इसको थोड़ा सा इंगित किया। हम लोग के मूल गुरु तत्व कौन है? ये अखंड गुरु तत्व। और वहां से ललिता जी शिक्षा भी गुरु, विशाखा जी
शिक्षा गुरु,
शिक्षा गुरु, और रूप गोस्वामी भी उनके नीचे शिक्षा गुरु के अंतर्गत शिक्षा गुरु। ये परंपरा हम लोगों की, वो परंपरा दिखलाने के लिए ऊपर से है, और ये जो परंपरा है शिक्षा की धारा बहुत गुण और रहस्यपूर्ण है। इसको राजानुगा वैष्णव लोग इस रूप में लेते हैं, संग रूप मंजरी प्रसिता सुरेश में उनका परस्त बदन में, इस सब श्लोकों में उन्होंने सिरूप मंजरी कराचित पाद पद्म को चंद्र नंदन कुजार्चित मस्तिकाया हामोद का फन की गौर सुधार बिंद संबान नानी अहो काचिन की रूप पूर्वक मंजरी, और कोई रूप नामक कोई एक मंजरी जब से दृष्टि चकार हमारी दृष्टि में आई, अर्थात उनको मैंने देखा, उन्होंने दर्शन दिया, तब से उन्होंने मेरा मन ले करके और कहां स्वीकार किया, राधा कृष्ण के चरणों में
निमज्जित करा,
तब से मैं अपने हृदय को वहां से उठा करके दूसरी जगह नहीं दिया। इसलिए वही हमारी सर्वस्व है। कौन?
रूप।
इसलिए प्रभुपाद जी ने इस धारा को सुरक्षित रखते हुए कहा, आग
क्या
आदान श्रीणम दंतम जाके पुनः पुनः श्रृंबरी
श्रीमद रूप पदाम
पदाम्बरी धूलि मम जन्मनि जन्म। हमारे जन्म जन्म में ये रूप गोस्वामी की चरण धूलि हमारे के द्वारा में अभिषिक्त होते रहे, वही हमारा रूप मंजरी, हमारा यथार्थ संपत्ति वही हमारे लिए धन। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन जन से मोर आभरण से मोर
प्राणधन
प्राणधन से मोर जीवन रूप गोस्वामी मंजर क्यों? वो हमारे गुरु हैं, महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं। अब ये रूप मंजरी से आगे चलने पर कहाँ गया? विशाखा जी। अब विशाखा जी से आगे चलने पर कहाँ गया? और ललिता जी से फिर पहुंच गया ये अखंड गुरु तत्व का। इसमें कोई कोई दुर्लभ आदमी, हम लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए, हम राधा जी की चरण की टीम करीब हो सके और गुरु परंपरा के माध्यम से वहां पर।
तो बलराम जी तो वैदिक भक्ति के हो गए, राजन का भक्ति समझने से कैसे हो गए?
समझना यहाँ पर उसी चीज के लिए यहाँ पास आ रहा है। अखंड गुरु तत्व है श्रीमती राधिका जी। तो यहाँ पर विरक्त चक वो श्रीमती हमारों के गुरु जी हैं, श्रीमती राधिका जी ये कह रहे हैं। है तो ये कृष्ण करणामृत का श्लोक स्थूल अर्थ है ये बतला रहे हैं, करणामृत का बिल मंगल, और इसका विशेष अर्थ बतला रहे हैं कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उसके आंतरिक अर्थ में प्रवेश करता है ये श्रीमती राधिका जी की। चैतन्य महाप्रभु के पहले हमारे माधवेंद्रपुरी पाद इस श्लोक को उच्चारण करते 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 गदगद हो जाते, रोने ये उच्चारण नहीं कर पाते, और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको पुष्पित और पल्लवित किया चारों तरफ विष्णु चार। ये राधा नारायण जी के स्वयं श्लोक तो इसमें ये कह रहे हैं, हे देव हे दही हे गुणई कबंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणई कृष्ण हो हे नाथ हे रमन हे नैनाथिरा हा हा पदानुभविता। और मैं कब आपके श्री चरणों का दर्शन कर सकूंगी। पार्टी में अभी हैं, बैठी हैं, हो सकता है, और प्रार्थना कर रही हैं, रो रही हैं, जैसे आपके चरण कमलों को कब दर्शन, मानो कभी उन्होंने दर्शन किया ही नहीं। अंततः साधक में कुछ तो उत्कंठा रहनी चाहिए, कुछ जरूर उत्कंठा रहनी, नहीं तो वो भजन नहीं हो सकता। दिल मंगल कर रहे हैं, हे पहले उन्होंने कृपा सिंधु कहा था, अब वो कहे हे कृपा सिंधु ये गोविंद कुंड की बात है, गोविंद कुंड के तट कृष्ण और राधा जी दोनों जी आई हैं, अब उनसे रहा नहीं गया, दोनों से इनको जरूर दर्शन देना है, निकट में आए। जब आ गए तो एक कह रहे हैं जरा कुछ मोटे आवाज से कि आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़ो, नहीं तो ये पकड़ लेगा अंधा पैर। और वो सुरली कंठ से कह रही है, कोकिल कंठ से, ये अंधा कैसे पकड़ लेगा। पिल्ले मंगल सोच रहे हैं आज इन्हों की इच्छा हुई है, आज जरूर ये कृपा करके हमें दर्शन, आज मेरा धन्य भाग है। कह रहे हैं और कृपा सिंधु मनी मन कर रहे हैं आपके चरणों की नुपुर ध्वनि को सुन करके मुझे अब विश्वास हो गया कि आप अब दर्शन देने वाले। रुनझुन करके उनके चरणों के नुपुर बज रहे हैं, निकट आ गए हैं। और कृष्ण भी इंगित कर रहे हैं कि छोड़ना मत इस बार, यदि हाथ से निकल गया अवसर तो सदा के लिए निकल जाए, जरूर अब निकट आते ही तुम पकड़, सावधान रहना, उनको इंगित दे रहे हैं। जब इतनी आपकी कृपा हुई है कि यहां आकर के हमारे सामने अब खड़े हैं तो आप देर क्यों करते हैं, हमारे आंखें जो बंद हैं वो और आपका दर्शन करो, तो आपका वर्णन किया गया। इतना कहते कहते वो राधिका जी नीचे आती हैं और झपट करके उनका पैर पकड़ ले, तो ये सचमुच श्री चरण ने पकड़ लिया, तो कितना कोमल उनका श्री चरण होगा। और दोनों हाथों से झपट करके जब पकड़ लिया, कहते हैं अब तो छोड़ क्या चाहता है, बतलाओ क्या चाहता है। कृष्ण ने कहा जैसे मैं कह रहा था नहीं, यही पकड़ लेगा, अब ये जो कुछ चाहता है देकर के अपना पिंड छुड़ाओ, अतः तो तुम जो चाहता है वो करो। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं क्या बतलाओ, तो अजय मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहता हूं कि आपके दोनों के दर्शन मधुर दर्शन में कर सकूं, एवं अस्तु ऐसा ही हो। देखा चरण तो पकड़े हुए हैं और सुना सुंदर रम्य उनका दर्शन किया, बंसी बजाते हुए दोनों मुस्कुराते हुए और उनको आंखें तृप्त नहीं हो रही, जैसे कि तैसे जड़वत बने रहे। श्रीमती जी ने शांति भंग करके कहा अरे अब तो छोड़, तो वो ऐसे के पैसे पकड़ रहे, अरे अब तो छोड़, पहले और कुछ मांगना है, और क्या चाहता है, हमारी आंखें जैसे थी वैसे ही रही, क्यों, इसलिए जिन आंखों से आपका दर्शन किया उन आंखों से विश्व का कोई भी चीज दृश्य नहीं देखा, बस यही दिन रात उसी को ही हृदय में धारण कर, बस यही चाहता हूं। कभी नहीं छोड़े तो जल्दी से छुड़ा करके, तभी उन्होंने कहा क्या हाथ छुड़ाए जाते हो, दुर्बल जान कर मोह, सब आपको बहादुर समझो जो हमारे हृदय से निकल सके थे। वो पहले करें हे देव, देव माने क्रीड़ा करना, नित्य करना भी इसका अर्थ है। नित्य करने में क्या होगा, ताल स्वर पर नित्य करेंगे ना तो नुपुर बजेंगे कि नहीं, जहाँ स्टेज पर कोई सबसे पहले कोई आता है बड़ा सुंदर नृत्य जैसा कृष्ण बन करके और एक राधा जी बन करके आते हैं।
पहले नुकुर ध्वनि सुनाया
और नुकुर झमझम करते थे, जबकि स्टेज पर आते हैं सब लोग एकदम चौकस, लाखों आदमी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। यदि वो सुंदर हो, गला सुरीला हो और रात के साथ में वो कीर्तन कर रहे हैं, गान करते हैं और उसमें तरह तरह के वाद्य उसमें मिले, तब देखो ये कैसा समा बन जाता है। तो इसका नाम है दिव्य, दिव्य मंदिर, देव माने क्रीड़ती थी। इस प्रकार से कृष्ण के रुझुन बैठ बज रहे हैं और उसी प्रकार से चक करके नृत्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप बड़े खिलाड़ी, आप क्रिया प्रिय हैं, इसलिए तो राष्ट्र करते हैं। इसलिए आप देव हैं। देव माने और क्या, समस्त जितने भी आराध्य देव हैं उन सबके भी आराध्य देव हैं, सर्व कारण कारण हैं। नारायण भी आराध्य हैं और भी 24 लीलावतार भी आराध्य हैं, किंतु उन सबके ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण। इनमें से ऐसा कोई नहीं ये कृष्ण जैसा नित्य और रात और सबका मन को हरण कर दिया हो। हर शब्द वाक्य नहीं है जितना कि कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को हरि कहते हैं। इसलिए हरि हरति मनः, मन को हरि करते हैं अपने सौंदर्य से और ईश्वर से। इसलिए कृष्ण के तत्व में कुछ ज्ञान होना चाहिए, ऐसे भजन करने से नहीं होता। उनके संबंध में ज्ञान प्राप्त करके गुरु से तब कृष्ण का भजन करने से उनकी महिमा ज्ञान आएगा और फिर भक्ति, महिमा ज्ञान से ही भक्ति होती है, ऐसे साधारण उसमें नहीं। फिर कहते हैं दैवी, आप देवी नहीं है, अत्यंत प्रिय है। इस तरह से एक एक शब्द का अर्थ किया है। कल तो हम लोगों की व्यास पूजा होगी, गुरु पूजा, पर तो फिर हम लोग इसका
उनकी आराधना का दिवस आज है। केवल इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूजा भी कहते हैं, पर हमने व्यास पूजा के संबंध में उसको बतलाया। किंतु हम एक विशेष बात लक्ष्य करते हैं, व्यास जी के साथ में गिरिराज जी का क्या संबंध है, जो आज लाखों लोग करोड़ों लोग गोवर्धन में परिक्रमा करते हैं। उस पर विचार करने के हम देखते हैं गोवर्धन जी का इनके कुछ संबंध है, उनके संबंध में विचार करेंगे। साधारण रूप से हम देखते हैं गोवर्धन जी का संपर्क सनातन गोस्वामी और सनातन जी का संबंध गिरिराज गोवर्धन से बहुत घनिष्ठ था। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने गिरिराज जी की बहुत विशेषता मानी, जितने हमारे गोस्वामी ने भी मानी ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई, ब्रज में भी वृंदावन का महत्व अधिक बदला है। वृंदावन दोनों को उसमें 32 मील में, उसमें भी गिरिराज जी 32 मील में गिरिराज जी को सबसे श्रेष्ठ बताया और गिरिराज जी ने भी गिरिराज की तरक्की में सब होने पर भी और उसने बदलाया राधा कुंड तक पहुंच गया। हमारे कोई प्रश्नों का यही विचार है, क्योंकि यहीं पर गोपियों ने विशेष करके श्रीमती राधिका जी ने जो सेवा की वही पर सर्वश्रेष्ठ सेवा विशेष करके राधा जी का महिमा, राधा जी की महिमा यह राधा की महिमा नहीं, राधा जी की सबसे का ये राधा कुंड में ही प्रमाणित है। इसलिए राधा कुंड और राधा जी दोनों एक और ब्रजमंडल का ये प्राण है, उनकी आंख भी कहा गया है। हमारे सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी इत्यादि के साथ में बहुत संबंध है, विशेष करके ये तुलना आज ही के दिन में सनातन गोस्वामी जी का श्री भाव दिवस सुनते हैं। गोवर्धन में ही वो उनका फिर उत्थान हुआ, पीछे से वृंदावन में जहां उनका भजन स्थली है, भजन स्थली
काली ग्रह मदन मोहन
मदन मोहन के पीछे में जिसको याद करते हैं
रंत समाधि मंदिर मदन मोहन घेरा लीला लीला मदन
द्वादशा शिला के मदन मोहन जी के मंदिर शिवानंद के गंगा के जमुना के तट पर था, वहीं पर वो भजन करते थे और अधिकांश समय वो वहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहां पर गोवर्धन में भी इन लोगों का स्थान है, राधा कुंड में भी इन लोगों का स्थान, जितने हमारे गोस्वामी लोग हैं रूप गोस्वामी इत्यादि सबका वहां पर
गोवर्धन में
नंदगांव गोपुर बरसाना जितने स्थान हैं, किंतु सबसे अधिक रहे हैं वृंदावन में और फिर रहे हैं जैसे गोवर्धन में और फिर रहे हैं राधा कुंड में। राधा कुंड में उसमें रहना थोड़ा सा थोड़ी सी असुविधा थी, तब तक वृंदावन यमुना के किनारे बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और वहां पर काफी संत लोग वहां पर उपस्थित हो चुके थे, अपना भजन कुटीर बना करके भजन करने लगे। किंतु जिस समय महाप्रभु जी आए थे इससे बहुत पहले उस समय तक वहां पर कुछ भी नहीं था, आज तक वर्ष के बाद शायद ये आए होंगे महाप्रभु जी के बाद में महाप्रभु जी आए थे बहुत पहले, इसके बाद में सनातन गोस्वामी और उप गोस्वामी आए और उन्होंने धीरे 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 स्थान को विकसित करना आरंभ किया, धीरे धीरे गोविंद जी का मंदिर बना रूप गोस्वामी के समय में, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी का बना, कुछ दिन के बाद ही में मधु पंडित जी ने राधा गोविंदनाथ जी को प्रकाश किया और थोड़े समय के अंतराल में पीछे से और गोस्वामी लोग जैसे कि हरिदास जी बिहारी जी का मंदिर को प्रकाश किया, राधा बल्लभ का मंदिर मिथरवंश जी ने तीनों के समसामयिक जी थे, इतने में हमारे गोस्वामी आ गए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उन्होंने राधा ये सब समसामयिक थे, वो सब लगा सके वृंदावन में जगह जगह अपनी भजन कुटी बनाई जंगल भवन में बदली और वहां पर धीरे 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 स्थान का इसलिए यहाँ पर अधिक लोग रहते थे और वहां पर जाते थे, क्योंकि रघुनाथ दास जो ही ऐसे हैं जो अधिक समय तक वहां पर रह सकते हैं। सनातन लोग पहले हम इस पर विचार करेंगे, मैं तो सोचता था जैसे ब्रह्मचारी लोग सब कुछ कुछ बोले इस विषय पर विशेष करके, हाँ जैसे सभी प्लांट है मेरा भी प्लांट मैं काम में क्लांति है, तुम लोगों ने परिश्रम किया और तुम लोगों की जितनी है क्लांति हम उसको मैं तो तकिया लगा करके बड़े आराम के साथ में घंटों रहे तभी हम लोग विचार करेंगे। गुरु पूर्णिमा से इसका संबंध क्या है और सनातन गोस्वामी जिसे शिक्षा क्या थी, सनातन गोस्वामी जी के जीवन चरित्र पर हम थोड़ा सा विचार करते तब फिर इसका हम विचार करें। जैसे गुरु पूर्णिमा से गिरिराज जी का क्या था, पहले हम विचार करते हैं हम लोगों के लिए सहायक है वो चीज जो सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र है।
यदि लिया जाए ठीक रूप से स्वरूप और सनातन दोनों महापुरुष जी के शिष्य हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने ऐसा ही कहा वो क्या है
पुरी के धन
ईश्वर पुरी के धन परिजन
प्रभु
महाप्रभु
इसके
बाद में
रूप प्रिय महाजन
जीवप्रिय
महाजन
इसलिए महाप्रभु जी से आए हैं ये सनातन गोस्वामी और उस गोस्वामी इन दोनों को और इनके बाद में रघुनाथ गोस्वामी और तो ये सनातन गोस्वामी जी से हम लोगों का कुछ संपर्क है क्यों उन्होंने हमारे संपर्क को ठीक करने के लिए हरि भक्ति बुलाई किन लोगों के लिए साधारण लोगों के लिए शिष्य और गुरु में क्या संपर्क होना चाहिए शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए उनके प्रति उनकी सेवा की भावना कैसी रही ये सनातन गोस्वामी जी ने इस चीज को हरिभक्ति विलास में यद्यपि हरिभक्ति में उन्होंने विलास में लिखा है मैं ये जो कुछ लिख रहा हूँ अधिकांश गृहस्थ भक्तों के लिए उपकार के लिए लिख रहा हूँ ये लिखा है तो भी इसको ये समझो गृहस्थ भक्तों के लिए तो है किंतु त्यागी भक्तों के लिए वो अत्यंत अधिक रूप में वो सब होना चाहिए वो तो इसलिए कहा कि जो गृहस्थ हैं उनके लिए पालनीय है और जो त्यागी हैं उनको पहले पालन करके उसमें परिपक्व होकर के उसे ऊपर की स्थिति में चले गए इसलिए उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हम लोग को सीखना चाहिए यदि हरि भजन में प्रवेश करना है तो पहले हम सनातन गोस्वामी जो संबंध के अभी के गुरु हैं अर्थात ये दीक्षा गुरु कहलाते हैं और उप गोस्वामी है शिक्षा गुरु और ये संबंध के हैं ये संबंध स्थापन करना दीक्षा गुरु का कार्य है और शिक्षा गुरु क्या करेगा वो सेवा में
साधन की
शिक्षा लेकर के साधन की शिक्षा लेकर के ऊपर एक ही गुरु होने पर भी पहले संबंध ज्ञान और उसके बाद में अभिधेय का ज्ञान दो भी हो सकते हैं एक भी हो इसमें कोई भी ये नहीं तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने हम लोग के उपकार के लिए हरि भक्ति विलास में इन सब चीजों को अच्छी तरह से साधकों को कैसे कैसे गुरु जी से दीक्षा इत्यादि लेकर के दीक्षा के समय में हम लोगों को क्या क्या गुण चाहिए और गुरु जी का भी गुण चाहिए ये सब की चर्चा हम लोगों को इसलिए पहले होता था एक वर्ष तक गुरु शिष्य को देखता है हाँ ये क्या चाहता है और सब फिर उनको देते थे तो सनातन गोस्वामी ने इस विषय को स्थिर करने के लिए ये विचार दिया कि सबसे पहले गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए इसके बाद में फिर शिष्य का लक्षण दिया तो गुरु का लक्षण में उन्होंने हमारे भागवत से पुराणों से उपनिषदों से उन्होंने इस पर विचार किया गुरु संसार में पहला श्लोक क्या है प्रथमा तद्विज्ञानार्थम सगुरु अभिगच्छेत अच्छा उसमें जो कहा गया तस्मात ये किस लिए तस्मात माने होता है क्या तस्मात माने इसलिए किस लिए भगवान संसार में की परीक्षा करे परीक्ष कर्म
परीक्षण
कर्म की कारण
निर्वेद
माया सत्य ज्ञान आपन गुरु उसमें दो लाइन ऊपर का जो जोर चरण उसमें छोड़ करके दिखाई उसको सबको याद होगा इसलिए उसने पहले परीक्ष कर्म कर्म और कर्म से पाए जाने वाले लोगों की परीक्षा करके ये देख ले, इसमें कहीं भी सुख और शांति नहीं है। जितने प्रकार के कर्म हैं परम सप्तमय अस्वस्थ अभद्र है, चाहे वो सत्कर्म हो आ चाहे दुष्कर्म, सब समय कहते हैं अभद्र है। क्योंकि उससे क्या होता है, कर्म से हमारे संसार में फल होना अधिक फल होना और शरीर में आसक्ति होती है, आत्मबुद्धि होती है, इसीलिए कर्म करते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में कोई भी कर्म अच्छा नहीं है, कर्म वही अच्छा है कुछ पूछ यदि वो भगवत भक्ति के भाव से कुछ पुष्ट हो, भगवत भाव से जुट करे, भगवान के लिए हो, तब तक कुछ ठीक है। अन्यथा निष्कर्म भी अच्छी तरह वर्जितम निरंजनम भगवान के प्रति यदि कर्म नहीं अर्पित हो, माता पिता की कोई लाख जन्म तक ये सत्य भी यदि कहते हैं तो कुछ लोगों को लगेगा, किंतु फिर भी आप लोग समझ लीजिए, कोटि एक करोड़ जन्म तक माता पिता की सेवा करने का फल क्या होगा, क्या होगा, फिर से जन्म मरने और तुम्हारा बेटा तुमको आकर के तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा, ये फल इतना ही। तुम हजार बगीचा लगाओ, हजार स्कूल बनाओ, हजार अस्पताल, लाख अस्पताल बनाओ, किंतु उसका फल क्या होगा, फिर मन कर होकर के जन्म लेकर के हो सकता है तुम रोगी बनोगे और वो सब लोग जो रोगी थे वो तुम